8489
शीरवाणी पांचवा पेज अर्थात मुरली का दूसरा पेज मध्यादि। बात चल रही थी महाभारत लड़ाई कब लगी, जब भगवान ने राज्य को सिखाया। राज्य को कब सिखाया, जब लड़ाई शुरू हुई, ज्ञान पूरा हो गया। क्या सब आत्माओं का? बाबा ने तो बोला जब तक जीना है तब तक पीना है। तो जीना कब तक होता है इस दुनिया में, जब तक अपने पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं हुई आत्मा को। जब आत्मा को अपने विशेष पार्ट की प्रत्यक्षता हो जाती है कि मेरा अमुक ये पार्ट है, हू एम आई, इसका जवाब मिल जाता है, तो फिर वो पुरानी दुनिया में जीना पसंद नहीं कर सकता। तो महाभारत लड़ाई कब लगी, जब भगवान ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया, जो प्रवृत्ति का पहला मॉडल है, वो बुद्धि योग से प्रत्यक्ष हो जाता है, समझ में आता है नई दुनिया की आदि और पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात अब विनाश होना है। घोषणा क्या की थी, नई दुनिया का आदि और पुरानी दुनिया का अंत कब होगा? मुरलियों ने घोषणा की थी, 10 वर्ष की घोषणा की थी 66 में, 66 में जो 76 में पूरी हुई। तो जरूर दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी थी कब, 76। बाहर की पुरानी दुनिया ही नहीं, ब्राह्मणों की संगमी हुई दुनिया भी घोर अंधेरे में पड़ी। अब उनको जगाना, आधार कल्प के सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि किससे देखो, हर आत्मा को किस दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, भ्रातृत्व भावना से देखो, किस भावना से न देखो है, भेद पैदा करने वाली भावना से न देखो। हम सब परमात्मा बाप के बच्चे हैं, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये भावना से देखें न देखो, क्यों नहीं देखो, सभी आत्मा एक बात के बच्चे। यहाँ सभी आत्माओं को पुरुषार्थ करने की तो बात ही नहीं, यहाँ तो राजयोगियों की बात है, सबकी बात कहाँ हो रही। बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, तो जो राज्यों में सीख रहे हैं उनकी बात हो रही है। 108 में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सभी है, लेकिन सभी होते हुए भी जो बीज है 108 वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं या नहीं है। हाँ, तो उनका भविष्य का रूप देखना चाहिए या वर्तमान का रूप देखना चाहिए? वर्तमान में तो भले दूसरे धर्म के बीज हैं, छिलका चढ़ा हुआ है, लेकिन धर्मराज बाप भी तो आया हुआ है डंडा लगाने, हाँ, छिलका उतारने के लिए। तुम उनको काली दृष्टि से क्यों देखते हो, तुम्हारा क्या हक है, तुम उनको किस दृष्टि से देखो? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, सब परमात्मा बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं। 84 जन्म लेने वाले को देवता कहा जाता है, ये बाप का काम है उनके कबर को देखना और कबर को उतारना। या कि समझते हो कि हमारा पार्ट खुल गया तो हम ही उतार दें, अगर खुल गया तो पहले अपनी बुद्धि में निश्चय चाहिए, अपनी सीट फिक्स करो कि हमारी ये सीट है, और उस सीट पे सेट हो जाओ, फिर भले छिलका उतारने लगो। दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी है, आप उनको जगाना है। आधा कल्प के सोए हुए पड़े हैं। तो बात समझाते हैं अपन को भाई भाई की दृष्टि से देखो तो तुम सब, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पावन शरीर मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, जब तक बीज ही नहीं सुधरा तब तक वृक्ष नहीं सुधर सकता। शरीर तब सुधरेगा जब मन बुद्धि रूपी आत्मा बिल्कुल निर्मल निर्मल हो जाए, और मन बुद्धि रूपी आत्मा तब तक निर्मल नहीं होगी, संपन्न स्टेज में हमेशा के लिए, जब तक 500 करोड़ की दुनिया मौजूद मौजूद है, विपरीत वाइब्रेशन फैलाने वाली। तो उसका विनाश भी तब होगा जब थोड़े से ब्राह्मण संगठित होकर के एक परिवार प्रैक्टिकल बन जाए, जिनका एक बाप हो। ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप हो गया है भारतवर्ष में। तो पारिवारिक व्यवस्था आज भी कहीं न कहीं भारतवर्ष में है। 100-100 से ऊपर व्यक्तियों का एक परिवार, एक चूल्हा और एक उनका कंट्रोलर। मजाल है जो कोई उस एक की मत के विपरीत कोई कार्य कर जाए। ऐसे आज भी परिवार, लेकिन वो हैं देवी देवता सनातन धर्म के थोड़े जन्म लेने वाली आत्मा। तो हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती, वो है नई नई आत्माएं, और हम हैं पुरानी आत्माएं, पूरे 84 जन्म लेने वाली देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। तो जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, बहुत पुराने हैं, तो जड़ी भूत हो चुके, अब उनको फिर से परमात्मा बाप ये सिखाने आया है कि पारिवारिक व्यवस्था क्या होती है भारतवर्ष की। देवताओं का परिवार और आज के कंजरों का परिवार, कुछ अंतर तो होगा ना? क्या अंतर होगा? कंजरों के परिवार में तो कंजर खाना लगा पड़ा है, सबको अपना अपना देव है, कोई किसी की मानता नहीं। तो ये परिवर्तन सब होगा ब्राह्मणों की दुनिया में, कि एक परिवार ऐसा संगठित देखने में आए। जब जब आत्मा पावन बने, आत्मा पवित्र बने, बनना तो सभी को है। कोई बच्चे ये ना समझे कि हम बाबा के बच्चे बने या बाबा को हमने पहचान लिया लेकिन हम बन नहीं सकते। हाँ, कोई योग बल से बनेंगे, कोई सजाओं से बनेंगे, बनेंगे तो जरूर। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते हैं, काहे कि हाँ याद की यात्रा की प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ, जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं, एकदम नीचे की ओर देखते हुए जाएंगे, इधर उधर देखेंगे भी नहीं। तो उनका मिसाल क्यों दिया? तुम भी क्या करो? हाँ, भारतवासी तो अनेकों को याद करते रहते, उनकी हालत क्या हुई पड़ी। बोला है कराची के स्टेज की बात, जो सच्ची की शूटिंग हुई थी आदि में, छोटा सा मॉडल बना था नरक की दुनिया के बीच में सड़क का मॉडल। तो क्या बोला मुरली ने, तुम कराची में रहे पड़े थे, कोई को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगा लेंगे। वहां कैसे थे, एक बाबा दूसरा न कोई। तो यह है संग के रंग का प्रभाव। तो बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, किस बात की, किस बात की प्रैक्टिस कराते रहते हैं, याद की यात्रा में क्या प्रैक्टिस कराते हैं,
पवित्रता की।
हाँ, जब याद में बैठाते थे बाबा तो क्या होता था कि सब की दृष्टि कहाँ लगी थी, एक बाबा की तरफ। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ, भारतवासी तो अनेकों को याद करते रहते हैं, बाप कहते हैं एक की सेवा है और किसी को याद न करो। देहद के बाप से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, सत्युग में सब जीवन मुक्ति मिलती, कलयुग में सब जीवन बंध में आ गए। जीवन बंध में क्या अंतर होता है और मुक्ति में क्या अंतर होता है, बंधन होता है, बंधन माना दुख और मुक्ति माना दुखों से मुक्त। अब जीवन बंध है, खुला हुआ जीवन नहीं है, उन्मुक्त जीवन नहीं है, बंधा हुआ जीवन है। ये किसको भी पता नहीं है, ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों से तो ज्यादा आज उन्मुक्त जीवन पक्षियों का है, जंगल के जानवरों का है, लेकिन मनुष्यों ने उनमें से भी बहुतों को बंधन में डाल रखा है। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, क्योंकि बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। युग कौन सा है, पुरुषों में उत्तम पुरुष। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है, भागवत में या रामायण बोध में, महाभारत में या गीता में, पुरुषोत्तम कौन, राम। हाँ, कृष्ण को कहा गया है पुरुषोत्तम, लेकिन उन्होंने गलती से कृष्ण को भगवान मान लिया। वास्तव में कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण तो भगवान से साक्षी करने वाला है जन्म लेकर। भगवान भगवती जिनको टाइटल मिलता है उनसे प्राप्ति करता है सत्युग में। अगर कृष्ण ही कहें तो संगम युगी कृष्ण कह सकते हैं, कौन सा व्यक्तित्व, सत्युग का कृष्ण नहीं। तो पैगाम देना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसा संगम युग, जिसे मैं पुरुषों में उत्तम कौन है, वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। तो कब से प्रत्यक्ष होता है, 76 से। जब से महाभारत से लड़ाई लगी और बाप ने राजयोग सिखाया, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप कट जाएंगे। क्यों त्रेसर्जन ने कुछ पुण्य नहीं किए क्या? पाप ही क्यों कट जाएंगे? पुण्य नहीं कट जाएंगे ऐसे क्यों नहीं कहा कि पुण्य कट जाएंगे? अरे पाप पुण्य दोनों का हिसाब किताब का सफाया होगा तब तो इस दुनिया से मुक्ति होकर के परम धाम में जाएंगे है? और पुण्य अगर रहेगा तो उनका अधूरा नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसलिए दूसरे धर्मों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कयामत जब होगी तो दुष्ट आत्माएं हैं वो त्राह त्राह करेंगी क्योंकि उनके पुण्य क्षीण हो चुके होंगे, पापों का पलड़ा भारी होगा और हमारे पुण्यों का पलड़ा भारी होगा और पाप सब भस्म हो चुके होंगे। इसलिए हम उस आग की ज्वाला के अंदर, उस भट्टी के अंदर भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और दुनिया क्या ऐसा है कर रही हो तो ये कब होगा है? 96 के बाद होगा ये, इससे पहले हम नहीं होने देंगे। क्या बल पाठ पुरुषोत्तम संगम युग बल 76 से शुरू हो गया है कि पुरुषों में उत्तम कौन कौन आत्म कौन कौन पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ही तो उत्तम से उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता होनी है। तो वो बल 76 से शुरू हो गया लेकिन हम कब सुधरेंगे है? 96 इससे पहले हमारे सुधरने का सवाल नहीं है। ऐसे है इंडिया है? जब समय आता है तब हम चेंज होंगे। हम समय को चेंज करने वाले चैतन्य आत्मा नहीं है, समय जड़ है और आत्मा चैतन्य पावरफुल कौन हुआ है? चैतन्य में ज्यादा पावर होगी ना, जड़ में तो पावर नहीं होगी ना। तो समय को भी चेंज करने वाले कौन? कोई तो निमित्त बनेंगे सचिव लाने के। निमित्त माने साकार कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सारा कार्य करेगा। तो पाप कट जाएंगे ये है सच्ची गीता। किस बात से पाप कट जाएंगे? कैसी याद से? हाँ मां में कम याद करो और साथ साथ कोई दूसरों को भी याद करते गए और मां में कम भी याद करते गए, दोनों हाथों में लड्डू वो मीठो दऊ मीठो, तो क्या होगा? तो बराबर रहेंगे। अच्छा हाँ तो राजा की घरवारी बने बिना है क्या बने हुए हैं बगू तो अनुभव होना चाहिए। तो साधारण आदमी की घरवारी बनाओ उल्टे कर्म करो राजा बनने वाले। अच्छा अच्छा तुम्हारे घर में सही तुम तो राजा बनने वाले हैं, राजा बेटा हुई है तुम्हारी आत्मा तो पुरुष बनते करो तुम उसी बनती है ना। अच्छा तो पाप कट जाएंगे ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैग तो तुम्हारे पास है, इस बैज को फ्री देने में हर्जा नहीं है, है? परंतु पात्र देख करके दिया जाता है। वैद्य कौन सा? चैतन्य वैद्य फ्री दिया जाता है, वो फ्री नहीं दिया जा सकता था क्या? या दिया नहीं गया कभी क्या? या दिया नहीं गया होगा क्या?
दिया
गया। प्लास्टिक का गोल, उसमें कागज काट करके त्रिमूर्ति लगा के दूसरी तरफ कृष्ण या लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा करके उसमें प्लास्टिक लगा दिया, कितना खर्चा आएगा? उस समय के मुकाबले नहीं, उस समय के मुकाबले, उस समय के हिसाब से 10 पैसा। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी जिस व्यक्ति की, उसने ढेरों के ढेरों बनवाए दी, लाखों की तादाद में। वी एंड देन जिस वैद्य की बाबा इतनी महिमा करते रहे, उस वैद्य की जिसने सर्विस की सबसे जाते, वो भाई आज कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे।
हिरंजन
सर, वो रामबाण आश्रम में चला गया। हाँ नहीं बेहद नहीं, फिर वहां से भी रामबाण आश्रम ही टूट गया। अब इधर उधर बेचारा धक्के खा रहा है। तो बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, तो बुद्धि में बैज पड़ा रहे। बुद्ध रूपी पाकिट में अगर बैज पड़ा रहेगा तो जेल में से निकाल निकाल के देखते रहो बैज में कौन कौन का चित्र है। 3 मूर्तियों का चित्र है, उसमें बाप है? 3 मूर्तियों में बाप है कोई? कौन है? ब्रह्मा माना बड़ी माँ, वो तो है, विष्णु भी है, फिर बाप कौन है? तो जरूर कोई 3 मूर्तियों में कोई बाप भी है जिसके लिए कहा कि बैग फ्री दे सकते हो किसी को, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। परंतु ये बैज भी उपात्र को नहीं देना है, पत्थर बुद्धियों को नहीं देना है, क्योंकि पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में तुम अगर डाल दोगे कि ये बाप है, ये त्रिमूर्ति है, ये लक्ष्मी नारायण बन, तो उसका मिसयूज करेंगे, तो उसका सही यूज नहीं कर सकते। तुम लौकिक बाप को याद करते हो, बाप उलाहना देते हैं और मुझे पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, तुमको लज्जा नहीं आती है? है? किस बात की लज्जा नहीं आती कि बाप को भूल जाते हो, पारलौकिक बाप को और हद के बाप को याद करने लग पड़ते हो? अच्छा, हद के बाप को याद करने में लज्जा की क्या बात है? है? उसमें लज्जा की क्या बात हो गई? लज्जा तो खराब कर्म में आनी चाहिए। अरे बाप को तो सारी दुनिया याद करती है, लौकिक बाप को ही सही, एक जन्म की प्राप्ति कराने वाला याद तो आएगा ना। चलो अनेक जन्म की प्राप्ति कराने वाला बेहद का बाप है, लौकिक इस लोक का ही है प्रजापिता, तो वो सही, लेकिन उसको याद करने में लज्जा की क्या बात है? हद के बाप तो सारी बर्बादी कराते हैं और बेहद का लौकिक बाप प्रजापिता, वो तो नहीं सारी बर्बादी कराता है? ब्रह्मा बाबा को लौकिक बाप समझे हैं, ब्रह्म कुमारी में ऐसा समझते हैं, और निराकारियों में क्या समझते हैं, और राधा कृष्ण वालों में क्या समझते हैं? अरे हमें दूसरों से क्या लेना देना, कोई किस में क्या समझता है? दुनिया में एक पंथ है, उनमें तथाकथित ब्राह्मणों का भी पंथ है। बात तो हमारी है कि लौकिक पाप को याद करने में लज्जा की क्या बात है। अरे हमारा सभा का किससे है? अब हम ब्राह्मणों की दुनिया में जो जन्म लेने वाले दूसरा जन्म लेने वाले ब्राह्मण बन गए। एक जन्म बेसिक नॉलेज से लिया और दूसरा जन्म एडवांस नॉलेज में ले लिया। दो जन्म हो गए, दो जन्म तो हो गए ना, तो अब दो जन्म ब्राह्मण बन गए तो लौकिक पाप तो स्मृति से ही गए। अब तो हमने गोद ले ली किसकी? अलौकिक बेहद के पाप की। तो बेहद का 500 करोड़ का बाप हमारी नजर में आ गया, तो उस लौकिक बाप को भी याद करने में लज्जा किस बात की? तो इसमें लज्जा की क्या बात?
लज्जा
कैसी है?
जब हमने बड़ी चीज ली,
हाँ बड़ी चीज कौन? तो ज्योति बिंदु
बेहद के बाप जान लिया।
अरे बेहद का, बेहद के बाप तो दो हो गए, एक तो इस लोक का प्रजापिता, वो भी 500 करोड़ का बाप है, और एक आत्माओं का पिता सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु। तो जान लिया चलो, फिर लौकिक बाप को याद करने में लग जाती क्या बात है? नहीं आता किसी की बिल्ली
भिखारी बनाता लौकिक बाप,
लौकिक बाप भिखारी बनाता, और पारलौकिक बाप कौन है?
वो
पावन बनाता, यानी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु पावन बनाता।
वो है तो प्रजापिता से तो
है
जो यही
अच्छा। तो फिर यहाँ लज्जा की क्या बात है? ये बात है, लज्जा की बात ये है कि जब सुप्रीम सोल बाप जो पारलौकिक बाप है वो जिस तन में आया हुआ है तो हमें दिखाई कौन सा पड़ना चाहिए? कौन सा उनमें, कौन सी आत्मा हमें प्राप्ति कराने वाली है और कौन सी हमारी हजामत कर लेने वाली है? है उसमें कौन देखने में आना चाहिए? हम किसको देखने के आदि बने? शिव को देखने के आदि बने, और सबको अगर देखने के आदि बने तो लज्जा की बात है ना। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, फिर अब पवित्र बनना है, तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है? बाप को कितना समय याद किया? बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी। क्या भूल नहीं करनी? जब बता दिया कि औरों के संग तोड़ और एक संग जोड़ो, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को छोड़ो, बिंदु बिंदु आत्माओं को और एक ज्योति बिंदु को पकड़ो। एक संग जोड़ो और अनेकों का संग छोड़ो। हाँ जी, तो इसमें भूलने की क्या बात है? इसमें क्या बात भूल जाते हैं? हाँ, एक ही ज्योति बिंदु को हम याद करते हैं, हम दो बिंदी थोड़े ही कच्ची कभी करते हैं, एक ही बिंदी को याद करते हैं, दो बिंदियों को कहाँ याद करते हैं या तीन बिंदियों को? है? अरे अरे संग का रंग तो साकार में लगता है।
सुप्रीम
सोल बाप में, सुप्रीम सोल दिल्ली आती है। हर संघ तोड़ एक संघ जोड़ो, मतलब ये है कि अपनी दृष्टि को चेंज करो। क्या चेंज करो? कि डब्बे को न देखो, हाँ उस डब्बे में जो हीरा है उस हीरे को देखो, जिसका जीवन कौड़ी मिसल है उस आत्मा को न देखो। क्या? किस आत्मा को न देखो जिसका जीवन अभी कौड़ी मिसल है, कौड़ियां लेता है और अपना जीवन दे रहा है। कौन
है?
जिसका डब्बा है वो कौड़ियां ले रहा है और हीरे जैसा जीवन दे रहा है। तो कौड़ियों का सौदा जो करने वाला है उसको न देखो, देखो उसमें किसको? हीरे को देखो। तुम्हें हीरा लेना है ना, तो जैसी दृष्टि वैसी तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी। नफरत कब आती है? परमात्मा के पास से। परमात्मा का पार्ट है, बुद्धि जज कर रही है कि ये परमात्मा का पार्ट है, फिर उससे नफरत क्यों होती है? हाँ, शिव को न देख करके सब को देखते हैं तो बदबू जरूर आएगी। बाप कहते हैं और संग तोड़े।
ग्यारह नंबर के रजिस्टर में चौथा गेट चार चार नवासा का नवासी का पैसे क्लास म्यूजियम प्रदर्शनी में ये समझाना है, क्योंकि इस समय सब बेसमझ। ये तो तुम जानते हो कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जाति सर्विस स्थान है म्यूजियम। क्यों? प्रदर्शनी, मेले, प्रोजेक्टर, भाषण, इनसे सबसे ज्यादा की सर्विस नहीं हो सकती क्या? म्यूजियम में बहुत आते हैं, प्रदर्शनी और मेले से भी ज्यादा आते हैं क्या? है? बहुत सर्विस क्यों बताई? सबसे ज्यादा सर्विस स्थान म्यूजियम क्यों बताया? बहुत आते हैं क्या? प्रदर्शनी और मेलों से भी, सम्मेलन से भी ज्यादा आते हैं क्या? फिर एक तो वहाँ बिना बुलाए आते हैं, कहाँ? म्यूजियम में। और दूसरी बात, जो आते हैं उनको चित्रों का भी सहारा मिलता है। और वो चित्र स्पेशल बनाए जाते हैं क्या? म्यूजियम में भी चित्र तो होते हैं, प्रदर्शनी में भी होते हैं, लेकिन म्यूजियम में जो चित्र बनाए जाते हैं वो स्पेशल चित्रकार बनाता है और बनाने के बाद फिर वो शो किए जाते हैं। तो सबसे जास्ती सर्वोच्च स्थान म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम? जड़ म्यूजियम। उससे जास्ती सर्विस तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जड़ म्यूजियम में जो चित्र होंगे वो वाइब्रेशंस नहीं फेंकेंगे। लेकिन चैतन्य म्यूजियम में جو بچے اسے سو کے اس میں رکھے ہوئے ہوں گے وہ وائبریشن بھی پھینکیں گے. سروس اسٹیشن تو سب سینٹر سے دہلی میں لکھا ہے اسپیشل میوزیم, میوزیم کیسا اسپیشل مانے آدھیاتمک, آدھی مانے اندر, آتمک مانے آتما کے, آتما کے اندر کا نالج دینے والا میوزیم. اس کا بھی ٹھیک ارتھ نہیں نکلتا ہے. کس کا کہ اسپیشل میوزیم نام لکھ دیا. بہت لوگ پرشن پوچھتے ہیں تم بھارت کی کیا سیوا کر رہے ہو, اسپیشل میوزیم کا صحیح ارتھ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ آتما کے اندر کی نالج نہیں دی جاتی کیا ہے؟ جڑ چتروں کے اندر آتما تو ہوتی ہی نہیں ہے پہلی بات. چلو چیتن چتروں کے اندر آتما ہوتی ہو, چیتن دلی کے میوزیم کی بات ہو, کیونکہ ساؤتھ نے کھولا تھا. کہاں کھولا تھا؟ دکن دلی میں. تو اسپرچل میوزیم تو سب کہا جائے کہ جب کہ جیون کیسا ہو, آدھیاتمک ہو. جیون لوکک نہ ہو, اگر لوککتا ہے تو اسپرچل جیون کہیں گے چتروں کا نہیں کہیں گے. اس لیے بتایا کہ اس کا بھی ٹھیک ارتھ نہیں نکلتا ہے. کس کا؟ ساؤتھ دلی میں جو میوزیم بنایا ہے ایک تو وہ جڑا ہے, تو اس کا ارتھ صحیح نہیں نکلتا. بھگوان واچ ہے, یہ ہے فارسٹ, یہ دنیا کیا ہے؟ کانٹوں کا جنگل. تم اس سمے سنگم پر ہو, نہ ہو فارسٹ کے اور نہ ہو گارڈن کے. اب گارڈن میں جانے کا پرشارتھ کر رہے تم اس راون راجی, راون راجی کو رام راجی بنائے رہے. تم سے پرشن پوچھتے ہیں جو یہ میوزیم بنایا اتنا خرچہ کہاں سے آیا؟ میوزیم میں چتر بنانے ہوتے ہیں. آج کل تو چترکار بہت پیسے لیتے ہیں, کلاکاری کے تو پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں. تو اتنا خرچہ کہاں سے آیا جو اتنی سندر سندر مورتیاں لگائی دی ہیں؟ بولو, ہم بھی کے ہی ہیں جو یہ کرتے ہیں. رام راجی کی استھاپنا ہو رہی ہے, تم تھوڑا روز آ کر کے سمجھو تو جانیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری اہم آبجت کیا ہے. وہ لوگ ساورنٹی کو مانتے نہیں. ساورنٹی من ایسا جنرل شبد ہے, مرلیوں میں آتا ہی رہتا ہے. ساورنٹی من کسی کو پتا نہیں. راجائی کون لوگ نہیں مانتے راجائی کو, جو پوچھتے ہیں کہ اتنا خرچہ کہاں سے آیا, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। कौन? राजाएं। इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प ये पार्ट चलता है बाप द्वारा स्थापना कर। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुग की राजधानी बना रहे हो और किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है। तुम ही खर्चा करते हो और तुम्हारा नाम भी मशहूर है, लेकिन हो तुम अननोन वॉरियर। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता। शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा में, प्राण दे देते हैं, बहुत बड़ा बलिदान करते हैं, बहुत अच्छी खासी वीरता दिखाते हैं हिम्मत करके, जो साधारण सिपाही नहीं दिखाई सकता, बड़ा अफिसर भी नहीं दिखाई सकता। तो वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है, क्योंकि सिपाही लोगों का तो रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तो तुम हो। ऐसा सिपाही जिसने ऐसी शहीदी की हो जिसको कोई जानता ही नहीं। बलिदान तो उसने बड़ा किया। तुम अननोन वॉरियर्स हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। तत्व प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगाए रहे हो। तुम सत्व प्रधान बने तो राज्य भी सत्व प्रधान चाहिए। सो तो तुम स्थापन करते हो श्रीमत पर सत्व प्रधान राज्य, श्रीमत पर स्थापन करते हो। वो भी है इनकॉग्निटो, इनकॉर्पोरियल। जिसका कोई साकार स्वरूप न हो, इनकॉर्पोरियल को इनकॉग्निटो कहा जाता है। कैसे आकर के इनमें प्रवेश करते हैं? इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में नहीं आता। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते क्या? इन स्थूल आंखों से देखना चाहो शिव बाबा को, या कोई देखना चाहे तो नहीं देख सकता। कैसे देख सकता है? दिव्य बुद्धि से शिव बाबा देखा जा सकता है। तुम भी गुप्त हो, बाबा भी गुप्त। तुम गुप्त हो क्या? बच्चे भी गुप्त हैं क्या? उनको नहीं देखा जा सकता? चूल्हा को नहीं देखा जा सकता? क्या देख तो रहे? सब आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं क्या? हैं? आत्मा को नहीं देख सकते? नहीं देखा जा सकता का मतलब यह है कि तुम्हारे पार्ट को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा तो शरीर धारण करती ही है, लेकिन आत्मा का जो पार्ट है अनेक जन्मों का, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो तुम भी गुप्त हो, बाबा भी गुप्त है, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। कितने पावन होंगे सतयुग में? हैं? हैं? कितने? बस। और ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगी वो अपवित्र होंगी? सोलह कला संपूर्ण नहीं होंगी? नौला। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति लेकर पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग करेंगे। भाव बल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ही न सके। ये है योग बल की बात। क्या सारे विश्व पर 500 करोड़ की मनुष्य आत्माओं के ऊपर दिल और दिमाग पर विजय प्राप्त करना, वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। क्या होता है ऐसे योग बल से कि वो तो आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि योग बल से तो उनको वो बाहुबल से तो उनको जीता नहीं जा सकता। बाहुबल तो उनमें बहुतेरा है, तो फिर खलास कैसे होंगे? योग बल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं और राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। काहे की? योग बल की। तुम बाप को और रचना के आदि मध्यंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब को स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ नहीं सकते, इसलिए बाहर वालों को सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपन को पतित कोई समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गीत गाते हैं पतित पावन कौन? सीताराम। तुम सब हो ब्राइड, बाप है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ब्राइड ग्रूम बन वर वधु, वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते, तुमको डबल इंजन मिली है। डबल इंजन कौन सी? एक तो शिव बाबा और दूसरा ब्रह्मा बाबा। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है, तो बाप भी ऐसे कहते हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो, युगबल में बैठते हो तो कोई झांझ आदि बजाते हो या शांति से बैठते हो? बैठते हो हैं? तकलीफ की बात नहीं, झांझ बजाने में, चिमटा बजाने में, हारमोनियम बाजा बजाने में तो थोड़ी तकलीफ होगी। खेलते फिरते बाप को याद करते रहो। दूसरा पेज, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाबा बिच्छू का मिसाल भी देते हैं। क्या मिसाल है? आराम से चलता रहेगा और जहाँ देखेगा कि नरम जगह है वहीं पर डंक मार देगा। तो बाप भी कहते हैं मेरे जो भक्त हैं नरम है, भावनाशील है, डंक किस में मारना है ज्ञान का? पत्थर बुद्धियों में नहीं, जो पत्थर है पिघल ही नहीं सकते, क्योंकि भावना वाला होगा तो पिघलेगा, पत्थर होगा तो पिघलेगा नहीं। तो जो मेरे भक्त हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको ये दान देना है। नरम कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण के भक्त या राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं सॉफ्ट कोमल स्वभाव के? नहीं तो व्यर्थ गवाओगे। क्या क्या व्यर्थ जाएगा? टाइम भी व्यर्थ जाएगा, एनर्जी भी व्यर्थ जाएगी और ज्ञान रतन भी व्यर्थ जाएंगे। वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी हो जाएगा। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर के उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, काहे का है? त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझ करके समझानी। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। अर्ध के बापों में और बेहद के बापों में खास अंतर क्या बताया? जो हद के धर्म पिताएं आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ के बाप होंगे, 200 करोड़ के बाप होंगे, तो हद के हुए ना, सबके तो नहीं हुए। तो वेद का बाप उसकी विशेषता बताई कि और धर्म वाले विनाश नहीं करते, उनमें शक्ति ही नहीं है कि दूसरों का मुकाबला करके और उनका खुलासा कर दें और एक एक चीज रह जाए। नहीं, और जो प्योर चीज होती भी है तो उसमें भी आकर के अपनी दूसरी चीज मिक्स कर लेते हैं। तो निश्चयती की उनमें शिफ्ट है और बाप इस बात को पसंद नहीं करता। क्या न वाइब्रेशन की निश्चयती पसंद करता, न दृष्टि की, न वृत्ति की, किसी भी प्रकार की निश्चयती बाप को पसंद नहीं है। तो बाप फिर क्या करता है, है? भाई पुराने धर्म भी चले आ रहे हैं, पुरानी धारणाएं भी चली आ रही हैं, पुरानी धारणाओं पर चलने वाली आत्माएं भी, मनुष्य आत्माएं भी चल रही हैं, फिर बाप क्या करते हैं, है? पहले तो प्यार से समझाते हैं, प्यार से नहीं मानते हैं तो फिर आरे ही लगाते हैं, बड़ो आगे बड़ो आरे ही मालूम है, डंडी होती है लंबी और इसमें छोटा सा सुआ लगा होता है, छोटी सी कील, तो लगाते जाते हैं जैसे अव्यक्त वाणी में, ऐसे बने हो, ऐसा किया है, अनुभव कर रहे हो, तो जानते हैं। तो जैसे जो महीन चमड़ी के होते हैं उनको तो अरई लगती है और जो गेंडा खाल के होते हैं उनको वो अरई असर नहीं करती। तो ऐसे फिर मोटी चमड़ी वाले जानवरों के लिए फिर क्या करना पड़े, है? शिव शंकर भोला भाला, शिव नाम पहले और शंकर नाम बाद, शिव शंकर और साथ में क्या लगा है विशेषण, भोला भाला, भोला पहले और भाला बाद। ये भाला किसके लिए है और भोला कौन है, शिव हुआ भोला और शंकर हुआ भाला, तो अरे ही छोड़ देते हैं, फिर क्या पकड़ते हैं, भाला पकड़ लेते हैं। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है, तो फिर आकर के जो द्वैत फैलाने वाले हैं, दूसरा मत लगाने वाले हैं, निश्चयती करने वाले हैं, कहने से और समझाने से मानने वाले नहीं हैं, तो फिर विनाश कर देते हैं, कराए देते हैं। तो विनाश भी होता है जब बेहद के पाप आते हैं। महाभारत लड़ाई कब लगी, जब भगवान ने राजयोग सिखाया था, है? 69 से पहले कहें, लड़ाई कहें, क्योंकि उस समय तो कौरव पांडव और यादव कौन है ये पता ही नहीं था। जो भी पढ़ने वाले बैठे हुए थे, गीता ज्ञान दिया जा रहा था, 18 अध्याय गीता सुनाई गई 51 से लेकर 68 तक, तो उसे सुनने वाले यही नहीं जानते थे कि हमारे ही अंदर यादव कौरव पांडव तीनों हैं। तो जब जानते ही नहीं थे, इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम में कोई विभेदी भी है, तो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ने का सवाल ही। तो लड़ाई कब से बस कही जाए, है? हाँ, लड़ाई 69 के बाद भी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि गीता पति भगवान प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गीता माता ब्रह्मा तो थी, चलो सूक्ष्म वर्तनवासी हो गई,
یعنی سوکشم اسٹیج میں رہنے والا برہما ہو گیا. لیکن مول وطن واسی کہاں, جو گیتا کا پتی, وہ بھی تو پریکٹیکل میں چاہیے. تو وہ پرتکش نہیں تھا, وان پرستی وانی سے پڑے ہونے کے کارن گپت تھا. تو 76 میں جب وہ باپ پرتکش ہوتا ہے گیتا ماتا کے ساتھ, گیتا پتی بھگوان بن کر, ہاں جی 76, تو مہابھاری مہابھارت کا جو استھان ہے دلی کے پاس پورو چھیتر, وہ تو انہوں نے بنائی دیا بکتی مارو والوں. واسطو میں تو ساری دنیا کرو چھیتر ہے, لیکن اس کا بھی کوئی سینٹرل پلیس ہوگا, ہونا چاہیے نا. تو ساری دنیا جو یدھ استھل ہے اس کا سینٹرل پلیس کون سا؟ دلی. ساری دنیا کی نظر دلی پر لگی ہوئی, ساری دنیا میں ایسا ایک ہی شہر ہے جس میں ہر دھرم کے لوگ زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج میں گھسے ہوئے ہیں. ہر دھرم کے ویکتی نے اس تختے پر راج کیا ہے. تو ہر دھرم کا اس شہر سے لگاؤ. تو مہابھارت لڑائی کب لگی؟ جب بھگوان نے راج یوگ سکھایا تھا. اور راج یوگ کب سکھایا؟ جب لڑائی لگی. تو دیوی دیوتا بننے والی ستیوگی آتماؤں کی پڑھائی کب پوری ہوئی؟ جو دیوی دیوتا تھے بننے یوگے پہلے پہلے, ان کی پڑھائی کب پوری ہو گئی؟ ضرور کوئی آتمائیں ہیں, پڑھائی پوری کب ہوتی ہے؟ جب اپنے سوروپ پر نشچے ہو جائے تو پڑھائی پوری ہو جاتی, پکا نشچے ہو جائے, اٹل اکھنڈ کہ میرا یہ پارٹ ہے, اس پارٹ کو کوئی ہلا نہیں سکتا, کاٹ نہیں سکتا. تو جب اکھنڈ اڈول نشچے ہو جائے گا پھر تو راجکمار کو پتا لگ جائے جو اپنے باپ سے بچھوڑا ہوا ہے کئی برسوں سے, اور اس کو پتا لگ جائے اس کے گلے میں بندھا ہوا تابیج کھل جائے, اور وہ بڑا ہو کر سمجھ لے کہ میں امک راجا کا بچہ ہوں, تو پھر اس کو کوئی چنتا رہے گی؟ پریشن کرے گا. کیا پریشن کرے گا؟ پرسارتھ کرے گا. کس بات کا؟ کہ راجائی تو میری ہے ہی ہے, جنم سدھ ادھیکار ہے, صرف اس کو پرتکش کر لینا ہے. تو مہابھارت لڑائی کب لگی؟ جب بھگوان نے راج
اور وہ سمے ہم کو ہونے چاہیے اور کسی کو سنگل لینے